जैसे के तैसे वो बंद हो गया, आखिर से एकदम दौड़े, पीछे से बलदेव जी दौड़े और सब लोग पीछे से पहुंचते ही गाड़ी में रुका दी, गाड़ी को खुलवा दिया और यशोदा मैया और नंद बाबा भी उतर आए। अब तो कृष्ण उनकी गोदी में पहुँच कर यशोदा जी के ग्रह करके यशोदा भी वैसे ही जकाती गैया के समान बछड़े को जैसे ये कथा रो रही है ऐसे रोने लगे। पीछे से नंद वसुदेव जी और देवकी रोहिणी ये सब लोग, ये सब बलदेव, ये सब आए, देख करके स्तंभित हो गए। आज कितने दिनों के बाद में मैया और पुत्रकार मिल गए, उसमें मिलने के बाद फिर देवकी ने देखा जैसे ये तो हमारे पुत्र को अब खुद न ले जाए, बड़ी डर गए और डर करके उनकी प्रशंसा करने लगे। कहो तुम लोगों जैसा उदार, तुम और नंद बाबा जैसा उदार कोई नहीं, जैसे आंख पक्ष पलकें आंख की रक्षा करती हैं, कैसे यदि कोई ऐसा भी कर देना तो क्या होगा, कोई चेष्टा नहीं कर, यदि चेष्टा करना पड़ता तो आंख कभी खराब हो जाती, बिना चेष्टा के अपने आप आंखें पड़ जाती, कुछ भी हुआ बस झट पल। ऐसे नंद बाबा और यशोदा जी आप लोगों ने इसकी रक्षा, हमारे पुत्र की, हमारे पुत्र की रक्षा की। ये अपने माता पिता को पहचानता नहीं था तभी ये चला आया, हम लोगों ने देखे और आप लोगों ने इतनी दयालुता के साथ में आपने पालन किया है जैसे इसका कोई नहीं था, ऐसा जगत नहीं देखा। अब वो कृष्ण बहुत बड़ा हो गया, तो अब ये मैंने कृष्ण को सुना रही है, ये समझे कि उसका पुत्र नहीं है, ये तो समझ रहा है कि मानो वही मैया है और मैं मैया नहीं। फिर रोहिणी ने देखा जैसे ये इनके प्रेम में ये बाधक बन गए, इसलिए उन्होंने कुछ कह करके अरे उन लोगों से बातचीत करना है, वो सब आके खड़े हैं चलो, तो वो उनको लेकर के वहाँ से हटा गया। अब रह गए यशोदा जी और ये बलदेव इत्यादि रह गए, दोनों में शुक्र बात नहीं पा। किंतु यशोदा जी समझ रही हैं कि यदि एक मिनट का विलंब हुआ तो ये गोपियाँ सारी मर गए। अब ये बहुत देर तक अपने को बहुत वर्षों से ये कृष्ण के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब इनके प्राण प्रतीक्षा नहीं करेंगे, अब तो जल्दी से जल्दी, इसलिए बलदेव जी को भी बहाना करके बेटा चलो जरा नंद बर्तन से वसुदेव और देवी से ये कर करके, और ये भी बड़े रसिक हैं बलदेव, वो समझ कर जिनके में बाधक मुझको भी नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको हाथ पकड़ करके और उनके साथ में पति चले। अब वहाँ पर गोपेश्च कृष्ण मोपलब्ध किराद अभिष्ट यद प्रेक्षणे विशेष उपक्ष कृतम सपंति दृग्धि हृदि कृतम मलम परिरब्ध सर्वा तद्भाव आपूरमपि नित्य जुजा, नित्य जुजा जो परम योगेश्वर हैं, जो कृष्ण के चरणों की चिंतन करते हैं और चिंतन करके उनके चरणों का और नित्य उनमें मिल जाते हैं, सही के इत्यादि लाभ कर जाते हैं कृष्ण, या उनका चिंतन करते करते एकदम तदार्थ हो जाती है, ऐसे जो योगी जुड़े अथवा नित्य युजान, नित्य युजान सत्रहवां रुक्मिणी प्रभृति ये उनसे नित्य मिलने वाली थी, उनके लिए भी एकांतिक दुर्लभ दुरापम ऐसे सुंदर भाव ही गोपियों में आए। और गोपियों ने क्या किया, गोप्यश्च कृष्णम उपालब्ध चिराद अभीष्ट बहुत दिनों से अभीष्ट उनके लिए थे कृष्ण का मिलन, बहुत दिनों पर कृष्ण को देख और निकट में उनको उपलब्ध, उपलब्ध है मैंने कि उप यही पर कृष्ण को देख, देख करके उनका पेट नहीं भरा, तृप्ति नहीं, आंखों के द्वार से क्या किया दृशिशु, पहले तो उन्होंने साप अभिसंपात दिया ब्रह्मा को, जब प्रेक्षण देखने में जो बाधा है दृशिशु क्या है पक्ष पलक, ये पलक ब्रह्मा जी ने क्यों बनाया, पक्षकृत पक्ष को बनाने वाले ब्रह्मा जी को भी सपंती, सपंत माने गाली गलौज करना या साप देना या बुरा भला कहना, ब्रह्मा जी को जो तुम इतना सुंदर रूप बनाया और देखने के लिए हमें केवल दो आंखें दी, आज इंद्र की भांति हमारे समस्त जितने भी रोम हैं वो आंखों में पलट जाते, वो तो हम लोग उनको देश, वो भी किसी पर पलक नहीं होने चाहिए थे, सांप जैसे नेत्र, सांप का ये पलक नहीं होता,
आप मछली
मछली का भी नहीं होता, ऐसे हमारे नेत्र बनाते, तब तो हम उस रूप को कुछ दर्शन कर सकते हैं, इसलिए दीर्घ भी हृदय कृतम, अपने हृदय में अपने आंखों के माध्यम से वो भीतर में ले गई कृष्ण को, कृष्ण तो वहां पर खड़े हैं और हृदय ने आंखें देखा और उसको बंद कर दिया, बंद हो गया भाव से आंखों के द्वारा हृदय मिले और परिरक्ष सर्वा, केवल चरण कमल का ही नहीं, कृष्ण के समस्त अंगों को अपने हृदय में ले गई और परिरक्ष, परिरक्ष माने क्या
आलिंगन करना,
आलिंगन करना एक हो करके, जोगी लोग क्या करते हैं एक होते हैं ना, ब्रह्म सायुज या परमात्मा सायुज इत्यादि उनको होता है तो उसमें मिलते हैं, आज उनसे कोटि गुण आनंद से युक्त होकर के परिरभ्य उनको मिल करके और आलिंगन में एक होकर के, एक हो गई जूझ माने
जो
उन्होंने एक हो भीतर में लेकर परिरभ्य सर्वा सब संपूर्ण रूप में तद भाव पुराम अपी, ऐसे भाव से उनको उनसे मिली, ये जोगियों के लिए भी नित्य मिलने वालों से भी यह अत्यंत दुर्लभ, जोगियों को भी नहीं है सतधाम अरुण प्रकृति के लिए द्वारका और मथुरा वासियों के लिए भी, यहाँ तक कि ये गोपियों के लिए ही का है, गोप्यश्च और लोग हैं वहाँ पर सखा भी हैं, इतना ने है उनको खूब आनंद हुआ, जाने के लिए जा सकते हैं किंतु इन गोपियों को जो आनंद हुआ उनको एक साथ में मिल गई वो किसी को क्यों ऐसा भाव ही नहीं है जो उनके अंदर में है, पोटेंशी नहीं है वो सब चीजों जो इन गोपियों में भाव की हो, हम लोग भी कृष्ण को है सभी दर्शन करने किंतु होगा क्या, जब तक ही ऐसा भाव नहीं होगा तब तक इस रूप का रसास्वाद उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए इतने साधन की जरूरत है और यदि गोपियों का भाव यहाँ पर पन्न उदित हो गया तब तो ऐसा हो सकता है, तो उसी के लिए कह रहे हैं कृष्ण कहते हैं यारी मेरी सखियों को कुछ लज्जित और संकुचित होकर कहता है यारी गोपियों बहुत धनी हो गया मैं भी मिलना चाहता हूँ किंतु मिल नहीं सकता, तुम लोग समझ रही हो अच्छा ये बात बताओ ठीक है कि मुझे तुम लोग कृतज्ञ समझ रहे हो, तुम लोगों ने सर्वस्व हमारे ऊपर में न्योछावर कर दिया, यहाँ तक लोग लज्जा इत्यादि सब की बेड़ी हथकड़ी को तोड़ काट करके मर्यादा का समुद्र लांघ गई, गुरुजनों का मर्यादा का पहाड़ जो था उसको भी टपक गए, किसी चीज की परवाह नहीं और हम ऐसे भी कहीं निकले जो मैं वहां से कराया तो मैं छोड़ अच्छा सचमुच में बतलाओ मैं कृतज्ञ हूँ जो क्या कुछ नहीं बोलते जानती हैं ये न जाने कैसा इसका अर्थ करेंगे कैसे घुमाएंगे फिराएंगे और आज के समय में भी ऐसी बातें हैं जरा पति जाए, इनका मन का भाव क्या है। इसके बाद में किसी ने कहा कि देखो मैं भी चाहता था मिलना, तुम लोग भी मिलना चाहते, और मिलना उचित ही था, किंतु एक अदृष्ट ऐसा है जो कि ऐसा है। वो अदृश्य कौन है? अदृश्य या तो कर्म फल या कर्म फल को देने वाला वो परमात्मा हो सकता है जो सबका साक्षी है। तो उसके वजह से हम लोग सब मिलते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं। कितना प्यार रहता है दो व्यक्तियों में, और थोड़ी सी बात के लिए ऐसे कोई बात नहीं ना हो। उदाहरण दिया कृष्ण ने, देखो एक जगह कुछ बालू के ढेर पड़े हैं और जोर से हवा आई, हवा में उड़ गया वो धूलि के कण, और एक जगह वो गिरेंगे या अलग अलग कहाँ कहाँ वो गिरेंगे कोई ठीक है कहाँ कहाँ, और कहाँ कहाँ का बालू फिर या रेती एक जगह में ऐसे करते हुए एक जगह में कोई भी ठीक नहीं अब कैसा। इसलिए यह अज्ञात ईश्वर ही परमेश्वर ही हम लोगों को जीवित करते हैं। गुरुदेव ने कहा वो कौन है, वो जो विजुक्त करने वाला मिलाने वाला है वो कौन है, भाग्य का नियंता कौन है, उसको कौन नियंत्रित करता है। तो लोग कहते हैं कि मैं ही हूं, तो परमात्मा। हमने और भी जगह सुना है और तुम भी कहते हो, तो तुमने पहले भी ऐसे ही उपदेश दिया, कृष्ण ने उपदेश दिया। देखो सचमुच मैं तुम लोगों को बतलाऊं ज्ञान की बात, जगत में हमसे किसी का भी वियोग नहीं है। मट्टी का मट्टी के घड़े से कभी भी वियोग नहीं है, क्योंकि मट्टी से ही बना हुआ है घड़ा, अतः उसके उस ऊपर नीचे बाहर भीतर सब तो उसी से बना है, इसलिए उसे वियोग नहीं। हमारे शरीर में छिटजल पाव गगन समीरा ये पांच तत्व से एक बना है, इसलिए हमारे शरीर में कभी भी इनमें से एक पदार्थ का वियोग नहीं। ऐसे ही समग्र विश्व का मैं उपादान कारण और निमित्त कारण हूँ, मैं मेरे बिना जगत का कोई भी एक कण भी तैयार नहीं हो सकता, इसलिए हमसे किसी का वियोग नहीं हो सकता। तुम्हारे अंदर में भी वही चीज है, इसलिए हमसे तुमसे कोई वियोग नहीं। तो ये पहले ऐसे नहीं मालूम होता, कैसे मालूम होगा? दूध में सर्वत्र घी है, प्रतीति नहीं होती किंतु है। मथने से मक्खन आने पर हाथ में उसको पिघलाने से तब वो मालूम होता है जैसे ये है, किंतु दूध के प्रत्येक कण में ही वैसे ही जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो हमारे अतिरिक्त हो, उसका उपादान और निमित्त कारण नहीं। इसलिए तुम लोगों का भी उपादान और निमित्त जो कुछ कहो मैं हूँ, इसलिए अंदर बाहर मैं हूँ। थोड़ा सा ध्यान करो, और विभव से उदाहरण दिए सुन करके अध्यात्म शिक्षा गोप्या एवं कृष्णे न शिक्षिता तदनुस्मर ध्वस्त जीव कोशस्तम मध्यगण। कहते हैं अध्यात्म शिक्षा, इस प्रकार से कृष्ण ने उनको अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा देने से उस शिक्षा को पा करके तदनुस्मर ध्वस्त जीव कोश, उससे उनका जीव कोश जो था वो माने नष्ट हो गया, क्षीण हो गया, और तम मध्यगम और उनको वो प्राप्त। अधर्म इसका अर्थ इस रूप का, उनका जीव कोश ध्वस्त हो गया, घट नष्ट हो गया, पट में मिल गया, सब एक हो गया, और उनको प्राप्त हुई किंतु ऐसा अर्थ जो है श्रीमद्भागवत के विपरीत है और शास्त्रों के ठीक विपरीत है सिद्धांत। इसका अर्थ इस प्रकार से हमारे गोस्वामियों ने किया और जैसा कि होना चाहिए उचित इस प्रसंग के अनुसार, इस प्रकार से अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा गोपियों को कृष्ण ने दी। देने के साथ साथ उनको महा दुख होगा, विरह प्राप्त होगा। उनके हृदय में ये भावना थी, ये कृष्ण ने कहा है कि कल या परसों मैं लौट आऊंगा, ये क्या था उनके हृदय में, यह कोष अंदर में छिपा, इसीलिए आज तक वो जीवित थी। यह भस्त क्या हुआ, जब इनकी बातों को सुनी तो कृष्ण तो अब आएंगे नहीं, वृंदावन में नहीं आएंगे और इनसे हमारा मिलन नहीं होगा, इसलिए विरह में इतनी आतुर हो गई कि वो आशा की जो क्षीण रेखा थी भी वो भी, इसलिए विरह में एकदम तड़पने लगी। उसको सुनकर हमारे लिए ऐसा उपदेश, तो जब तड़पने लगी तब फिर ये कह रहे हैं आहुष्यते ननिजनाभ पदा, इसके बाद में श्लोक का आहुष्यते, जब वो विरह में अत्यंत आतुर हो गई, जीवित रहने की एक क्षीण रेखा भी प्राय लुप्त हो गई, जीव कोष, जीव माने जीवित रहने का जो कोष है, कोष क्या है, फल में खीरा, जो मैंने प्रतिज्ञा करके कही थी
सांत्वना,
अब उनका यह जो कोष के भीतर में छिपा हुआ जीवन कुमुद का जो कोष था, ये सब वो विरह में तड़पना नहीं, बस जीवन में थोड़ी सी खीन बस विरह में तड़पते तड़पते, ये श्लोक श्रीमती राधिका जी स्वयं पढ़ रही, आहुष्यते ननिजनाभ, उनको कुछ रोष हुआ, रोष होने पर कृष्ण को श्रीमती राधिका जी आहुष्यते ननिजनाभ पदारविंदम योगेश्वरे विधि चिंतन। पहले इसका साधारण अर्थ बतला करके, चैतन्य चरितामृत में जो अर्थ किया है कृष्णदास का विराज गोस्वामी और कृष्णदास का विराज गोस्वामी को रघुनाथ दास गोस्वामी और रूप गोस्वामी से जो मिली है और उनको कहाँ से मिला,
स्वरूप दामोदर जी से,
स्वरूप दामोदर से महाप्रभु जी का वो गंभीरा में जो आलाप होता था उसमें जो रसास्वादन करते थे, उतना तो हो नहीं सकता इसमें जो खुद परस्पर वार्तालाप के द्वारा साधन करते, तो उसका थोड़ा सा भाव उन्होंने दिया और भी हम लोगों के समझने लायक, तो अभी हम लोग नहीं समझते, लाखों लोगों में से जिनका अनुभव होगा वो तो थोड़ा सा समझें, सब लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते। वो सबसे एकदम उतर करके कहा, सबसे सरल से सरल बद्ध जीवी समझे किंतु नहीं समझे, कभी जो भक्ति लाइन में कुछ हैं वो थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। तो वही कह रहे हैं गोपियां, गोपियों का अधर रोष से फड़कने लगे, ओह हमारे साथ में ऐसी वंचना, बहुत बार वंचना की है, पहले भी हमसे वंचना किया है उद्धव के द्वारा, बलदेव प्रभु के द्वारा, और खुद जब मिले तो ये कहना चाहिए था हम तुम्हारे साथ में वृंदावन में ही जाना चाहते हैं, चले, ये ना कह के ऐसा ज्ञान उपदेश देने लगते, वही पर से कह रहे आहुष्यते ननिजनाभ पदा, हे ननिजनाभ, ननिजनाभ माने क्या, जिनके नाभि से
कमल
अथवा ननिजनाभ कमल पद्मनाभ,
नागरी जिनका पद्म सुंदर है,
वो कैसा त्रिवली शोभा की का आधार है, पर नाभि में यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा सा, गालों में कपोलों में थोड़ा सा, मुस्कुराते समय में ये, गले में त्रिवली हो शंख जैसा, और पेट में भी तीन रेखाओं त्रिवली हो, और सब अंग प्रत्यंग सब सुंदर भाव से निविष्ट हो, और उनकी सौंदर्य में साथ साथ में वो लावण्य हो, उसमें भी हास्य हो, इत्यादि ये सब सौंदर्य की निधियां हैं। तो इसलिए नलिन नाभ, और दूसरा एक नलिन नाभ का और भी व्यूह तात्पर्य, नलिन माने उसको प्रकाशित कौन करता है, नलिन को सूर्य प्रकाशित करता है, सब चीज को प्रकाशित कर सूर्य में होता है ताप, ऐसे ताप देने वाले कौन ताप देने वाले, ये ऐसे जो आपने अभी जो बातें कही वो आप जैसे ताप प्रदान करने वाले व्यक्ति ही के द्वारा संभव है, दूसरे के द्वारा संभव, इसलिए इस उदाहरण को दोनों रूप में दिया, जो जैसा होगा वैसा वो समझे। तो नलिन नाभ जैसे कि ब्रह्मा जी को प्रदान, क्या ब्रह्मा जी को कहा था वो अंभोजनी कहा ना, अंभोजनी किस लिए कहा, जैसे वो जड़ है वैसे आपकी जड़ है,
कृष्ण के नाभि रूपी सरोवर में गोपियों के नयन रूपी सफरी नित्य विहार करती है, इसलिए नाभि
कहा गया। पदार बिंद योग विचिंत मभाव, आपने हमको ये जो कहा योगियों के जैसा तुम लोग हमारा ध्यान करो, और दूध में जैसे घी सर्वत्र है, मैं समस्त विश्व में ओतप्रोत हूँ, हमसे किसी का भी ऐसा योग नहीं कमी है, और मैं सर्वत्र हूँ, ध्यान के द्वारा मैं देखा जा सकता हूँ सर्वत्र, इसलिए इसके लिए सबसे पहले जरूरत है जो जीव अभी संसार में आसक्त है उसका हृदय निर्मल होना चाहिए, संसार से आसक्ति दूर, पहले विषयों में फंसा हुआ व्यक्ति उसकी अनुभूति नहीं कर सकता, इसलिए सबसे पहला कर्तव्य है संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है संसार में फंसे हुए, जैसे धन में आसक्ति है, पुत्र में आसक्ति है, स्त्री में आसक्ति है, घर में आसक्ति है, घर जल गया सब संपत्ति जल गई, किंतु उसी के चारों तरफ में घूम रहे हैं, देख रहे हैं उसको, किसी नैनों से देख रहे हैं, उसी की चिंता कर रहे हैं जहाँ है क्या हो गया, ऐसे ही सब समय जो इसी संसार में आ सकते हैं वो लोग इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं, संसार कूप पतित हो, संसार कूप में जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है ना, कूप है ना, बहुत गहरा है, ऐसे चाहो जो निकल जाए वो भी तुम नहीं निकल सकता, इसलिए संसार रूपी रूप में जो पड़े हुए हैं वो लोग ऐसा नहीं, इसलिए संसार रूप से निकल, ये कैसे होगा, हमारे चरणों का चिंतन करो, सबसे पहले संसार को पतितो तरणावलंबम, अवलंबन स्वरूप का क्या है, उनका चरण कमल, करते 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 तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा, और तब जो मैं अभी समझाया अध्यात्म ज्ञान की बात, मैं सर्वत्र हूँ हमारा कहीं वियोग नहीं, तब इस चीज को तुम लोग उपलब्धि कर सकते, कर सकती हो, गोपियाँ कर रही हैं। हाँ, आज बहुत दिनों के बाद में हमारे गुरु मिले हैं ऐसे जो अध्यात्म ज्ञान की ऐसे आप जैसे शिक्षा देने, हमने आप तो अहेतु करुणा करुणाशील, हम करुणा को नहीं चाहती थी पहले भी, हराश के समय में भी आपकी करुणा नहीं चाहती थी, किंतु आपने करुणा करके ये हमें शिक्षा दी, घर में लौट जाओ, पतियों की सेवा करो। ऐसा करुण आप हैं, अहैतुक दयालु। हमने पूछा नहीं और तभी इतना ध्यान आप बखाते गए हमारे यहाँ, बखानने लगे। आप कैसे हैं? अध्यात्म ज्ञान शिक्षकों के भी शिरोमणि हैं। अध्यात्म ज्ञान देने वाले तो बहुत हैं, तो आप कैसे हैं?
अध्यात्म शिक्षकों को भी ज्ञान देने वाला।
आपके जैसा विश्व ब्रह्मांड में कोई अध्यात्म ज्ञान को देने वाला नहीं है। लोग कुछ लोग सनक सनंद में, वो सब आपके अनुसार कला आपकी कला है, वो आपके जैसे आप। और वो भी बाई चांस हमको, हम नहीं चाहती थी तो भी आप स्वयं ही हमको वो ज्ञान दे। किंतु बड़े दुख की बात, हम इस ज्ञान के योग्य नहीं। हम तो मेरी अहिर की लड़कियां हैं, ग्वालों की लड़कियां, हम क्या ये सब चीज, हमारी बुद्धि का विकास। अरे इसके लिए योग्य कौन है? जो ऐश्वर्य रीति पे चिंतम अगाध अगाध बोध स्वरूप, जो जो भी लोग उनके ही चित्त में आप विचिंत, आप चिंता किए जाए, वो लोग आपका ध्यान कर सकते हैं। अरे हम तो साधारण ग्वालियां मूर्खा, गृह में हम लोग जन्म से ही घर अंधकूप में पड़ी हुई हैं। आपका ये इतना सुंदर ज्ञान, आप व्यर्थ इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मरुभूमि में आप क्या कर रहे हैं? बीज
हो रहे हैं।
अरे भाई मरुभूमि में थोड़े होता है, जहाँ कारण की कल्पना नहीं की जा सकती है वहाँ अंकुर होने की संभावना। प्रभु ऐसा क्यों दुरुपयोग इसका कर रहे हैं? इसीलिए वो कह रहे हैं योगेश्वरय विधि विचिंतम अगाध। ये तो ब्रह्मा और शंकर जो हैं, जैसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, इन ज्ञानों के अधिकारी हैं। और हम क्या हैं? संसार को पतिता पतितो तरणावलंबम गेहम जुषा, हम तो संसार में पड़ी हुई हैं। आप तो ऐसा कोई उपाय सरल सहज कीजिए, ये अध्यात्म ज्ञान को छोड़ कर दीजिए। गेहम जुषा मी, घर में आसक्त तो रहते हुए भी मनुष्य बुद्धि अपने चरण कमलों को हमारे मन में, आपके चरण कमल हमारे मन में विदित हो जाए, ऐसा सरल सहज उपाय हम लोग नहीं कर सकते, ये ज्ञान नहीं कर सकते। इसके अंदर में रोष भरा और उल्लाहना के साथ में ये कह रहे हैं, किस रूप में कह रही हैं? अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ये पढ़ा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं, अहो ज्ञान रूप सूर्य, जेठ के महीने के सूर्य, इतना तीव्र और इतना असज्य आपने ये अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा दी, जिसे हमारा जीव कोश भी जल करके खाक हो गया। अब जीने की आशा थी, जो अंदर हृदय गुण वो भी
समाप्त हो गया।
ऐसे आप हम लोग जल रहे हैं, आपका यह चरण जो है, जिसको योगी लोग बड़े कष्ट से और अपने अविचिंत अगाध बोध ही अगाध बोध सर्वोग के चरणों की चिंता करते हैं, हम तो ये चाहती हैं कि आपके चरण कमल हमारे हृदय पर दस्तक्षर पर नित्य करें, हम तो ये चाहती हैं। हम ये हम अपने हृदय में चिंता नहीं करनी चाहते, स्पष्ट रूप से प्रकट रूप में प्रत्यक्ष रूप में ही वृंदावन में, वृंदावन और मेरा मन एक है, इसलिए वृंदावन में आप पधारे, रास हो जमुना का किनारा हो, और उसमें हमारे नहीं चाहने पर भी आप हमारे शिरों पर अपना हाथ रखें और हमारे चरणों को दबाएं और अपने चरणों को हमारे, हम तो ये चाहती हैं, हम उससे संतुष्ट नहीं होने वाले। उसी को कृष्णदास को बताया गोस्वामी जी, महाप्रभु को आस्वादन जो गंभीरा में करते हैं उसका ही। ये महाप्रभु जी इन सब भावों से विभावित हुए और वही खड़े खड़े हैं रोमांच कम असुर सुलभ रहे किस लिए, एक एक भाव के आस्वादन करने के समय में ये भाव से दिव्य उन्माद उनको कहीं हो जाता है, कहीं पर उनको मिलन में ही विरह हो जाता है, कहीं विरह में ही मिलन हो जाता है, ऐसी सब स्थिति परवश हो गए हैं। तो उसी को कृष्णदास को बिहार गोस्वामी जी अपने शब्दों में बता रहे, राधा जी कृष्ण से कह रहे हैं प्राणा उलाना दे रही है, ये आहुश्च इसका तात्पर्य पहले एक एक शब्द का अर्थ अपने प्यार ने किया है। प्राणना सुन मोर सत्य वचन प्रजा शरण तहां तुम्हार संग ना पाइले ना रह लेती। सुखदेव गोस्वामी कैसे हैं, ब्रह्मचारियों में भी ब्रह्मचारी सिद्ध महा, नारद जी और व्यास जी क्या हैं वैसे महाप्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण ही हैं, गोपी जन बलवा नंदन और सनातन गोस्वामी और उप गोस्वामी कैसे, और राय रामानंद और ये स्वरूप दामोदर कौन है, बाल ब्रह्मचारी ही हैं, संन्यासी हैं, और उनके साथ में ये सब रसास्वादन कर रहे हैं, बड़े उच्च कोटि के ये सब लोग, कोई भी गृहस्थ भी नहीं है, गृहस्थ भी होता तो कोई बात नहीं, वो भी नहीं है, वो लोग हैं राधिका जी कृष्ण से उलाहना दे रहे। प्राणना सुनो मोर सत्य वचन, हमारे सत्य वचनों को आप सुनो, आपने तो बड़ी आध्यात्मिक की शिक्षा दी है, अब हमारा भी कुछ सुन लें। ब्रज हमारा सौदा, ब्रज ही हमारा घर है, तहाँ तुम्हार संग, तहाँ पर अपने चरणों को वहाँ पर उदित कीजिए वृंदावन में, और वहाँ हमसे मिलिए, ये हाथी घोड़ा और ये सब को छोड़िए, राजवेश छोड़िए, बंसी धरिए, मोर मुकुट पहनिए, और जसोदा और नंद का मैं पुत्र हूँ ऐसी भावना में आइए, और आपके सखा लोग कृष्ण हैं, गैया के पीछे पीछे चलें, वृंदावन के कुंजों में और गोवर्धन इत्यादि में यमुना के पुलिनों में हम लोगों के साथ में आप भी हैं, यही हमारा निवेदन। रजमा सदन तहाँ तुम्हार संग ना पहले ना रहे, हमारा जीवन नहीं आपके उपदेश होते, हमारे तो जीवन की एक जो आशा क्षण थी वो भी समाप्त हो गई। पूर्वे उद्धव गाय आप इतने निष्ठुर हैं कि सचमुच में हमारा जीवन का कोष मैंने जीवित रहने क्या जो आशा उसको जला देना है, एक बार नहीं उद्धव के द्वारा, फिर बलदेव जी के द्वारा, और फिर स्वयं साक्षात भी आज हमसे मिले, कहाँ प्रेम से बातें करनी चाहिए थी, आज वो न करके हमें फिर वही आध्यात्मिक बात की शिक्षा देने लग गए। योग ज्ञाने कही जा उपाय, अपने मिलने का उपाय बतलाया योग और ज्ञान, अरे हम कहाँ ये आगे बतलाएं, हम कहाँ, हम आपको छोड़ करके संसार की चिंता करना चाहती हूँ, और जो भी लोग आपको संसार को छोड़ करके आपको पाना चाहते हैं और आपके चरणों का चिंतन नहीं आता, और हम आपको चरण को छोड़ करके दूसरी चिंता करनी चाहती हैं और एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं हो पाता, तुम ही विदग्ध हो तब। हाँ एक बात, ये बातें आपने जो हमें शिक्षा दी सच सच में हमें शिक्षा नहीं, अभी चले जाओ यहाँ से, इसका मतलब ये नहीं है चले जाओ, कुछ इसमें रसिकता यदि होगी ना तो इसका बहुत से अर्थ हो सकते हैं। तो कृष्ण बड़े रसिक है ना, इसलिए वो कह रहे हैं तुम्हें विदग्ध कृपा में, तुम करुणा के आकर ऐसी भाषा में हम लोगों से बोलते हो जो हजारों आदमियों के बीच में भी तुम कह दो तो वो नहीं समझेंगे, केवल हम ही एक व्यक्ति समझेंगे, इसका नाम है रसिकता है कि नहीं है। रसिकता किसको कहते हैं, हजार आदमी वहाँ पर बैठे हैं, किंतु हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को इस रूप में कहा, जो जानने वाला वो जान गया और बाकी सब किसी ने नहीं जाना, ये रसिकता। तो कृष्ण ऐसे हैं जो अपने भी कह रहे हैं, वहाँ पर बहुत से लोग हैं, या उद्धव के द्वारा भी मिल जाए संदेश, उसमें ये बात है हजारों लोग बैठे हैं, हमारा जिससे जरूरत है, भाई शाम हो गई, शाम हो गई तो क्या हो गया, जो जैसा व्यक्ति है ना, कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं, बस इतना ही कहा। जो ढोरा पिट गया ढोलक लेकर के बजा रहा है कौन, जो जो नौकर जो बजाते हैं वो बजा रहा है। शाम हो गई है, नंदन नंदन लौट रहे हैं, या कृष्ण गोचारण के लिए निकल गए। जहाँ सुना विभिन्न व्यक्तियों का विभिन्न रूप से, जितने ब्राह्मण थे वो सोचे अब दक्षिणा लेने का समय हो गया है, अब चलना चाहिए नंद भवन, यशोदा जी के यहाँ जाएंगे, रक्षा को पढ़ेंगे, और यशोदा जी गाय और रुपया पैसा सोना इत्यादि कपड़े लगते हैं, इसे जल्दी से पहुँचना चाहिए। एक ब्राह्मण स्नान कर रहा था, सुना जब कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं, स्नान करते हुए आधा घट पान फेंक करके कपड़े बदल करके जल्दी से बिना चोटी बांधे ही, अब बिना
तिलक किए,
तिलक और आंधी किए हुए, बस एकदम दौड़। घर वाले पूछा रहे कहाँ जा रहा है, उसको बोलने की कोशिश, बहुत जल्दी से आने, यदि कृष्ण चले गए तो
मिलेगा नहीं,
दूसरा ब्राह्मण लेगा हमको मिलेगा। सखा लोग क्या सुन रहे हैं, मैया उनको सजा रही है, मैया उनको गले में हाथ दे रही है, तिलक लगा रही है, कपड़े पहना रही है, बड़ी सुंदर लाला पहन जाओ, नहीं तो कहेंगे दरिद्र घर का ये लड़का है, तो कृष्ण के सखाओं तुम्हारा कैसे स्थान, बड़े प्यार से मैया उसको समझा रही है, कहे नहीं मैया समय हो गया, इतने में सुनाई पड़ा कृष्ण गोचारण के लिए। बस उसने क्या किया, मैया रहने अब रहने, वो पहना रही है और वो पकड़ रही है, उसी में वो भाग रहा है, और ऐसे करते वो लठिया लिया, तिलक अभी आधा हुआ कि क्या हुआ, आँख में कज्जल पान आ रही थी और सब दे रहे थे, बस उतनी नहीं, वो भी यहाँ क्या करेंगे, मातृ स्थानीय हैं वो भी दौड़ी, और जो गोपियाँ जो हैं उस भाव वाली वो क्या करेंगे, एक सखी उनको अलता पान आ रही थी, बस पैर छिटका कर भगी। यदि कृष्ण चले गए तो फिर दर्शन नहीं होगा, इसलिए जिसकी रही भावना जैसी हरी मूर्ति, इसलिए शब्द वही एक किंतु किसके लिए कहा है वही समझेगा, इसलिए कृष्ण बड़े विदग्ध हैं कब किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए कृष्ण ने कहा एक, उद्धव ने समझा एक, गोपियों ने समझा, जो समझने वाला गोपियों का जैसा हृदय है वो ऐसा समझ लेगा, गोपियों कृष्ण के भाव को गोपियां समझ, कहते हैं कि आने हृदय मन मोर मन वृंदावन मने बने एक करी जाए। और लोगों का हृदय क्या है, मन है, मन कैसा होता है, संसार का बना हुआ होता है, इसलिए संसार की बातों को स्मरण करके उसमें आ सकते हो, जितना भगवान की तरफ में मन ले जाओ, किंतु कुत्ते की पूंछ की भांति सीधा करो फिर वो बोला, चाहे जितना नौ मन घी लगा करके आग में भी सेको वो तो ऐसा होगा ही, जितना ध्यान करो जितना जो कुछ करो कैसे होगा उसका तरीका उपयुक्त है, ऐसा हो सकता। तो कहते हैं कि हमारा मन क्या है, आनर हृदय मन, उनका हृदय और मन एक है, हमारा हृदय ही
वृंदावन
वृंदावन, तहां तुम्हार पाद पर कराह यदि उदय, यदि हमारे मन में, मन में मैंने हमारा मन क्या वृंदावन, इसलिए हमारे मन में यदि आपके चरण कमलों को उदित कर तो तबे तुम्हार पूर्ण कृपा माने, तब हम आपकी पूर्ण कृपा, वृंदावन में चलिए पधारी, यहाँ पर हाथी घोड़ा इत्यादि कुछ भी हमें नहीं सुहा रहा है। महाप्रभु जी रसिकता कर रहे हैं, उनके ठोड़ी को पकड़ लिया महाप्रभु जी विष्णु प्रिया जी, प्रिय अरे पान और माला भरा रह जाएगा, किस लिए लिया पानाओ को सही। कितनी कितनी बातें उनसे कह रहे हैं, श्रृंगार करने लग गए, जो आज कितने दो तीन वर्षों में अभी शादी हुई है, दो वर्ष आज तक इतना प्यार नहीं किया था, बहुत प्यार कर रहे हैं, बड़े लाड प्यार से बड़ी बड़ी प्रेम की बातें कह रहे हैं, हंस रहे हैं, उनको हंसाने की चेष्टा कर, और जितने ही हंसा रहे हैं उनसे श्रृंगार कर रहे हैं, उनका मन कैसा करता है, धोप
उठना चला जा रहा है।
किस लिए, जिन्हें आज क्या वज्र का प्रहार, ये तो ऐसा जैसे दिया भक भक किया ना हरिकेन, और क्या समझो
जीने का समझने वाले,
ये क्यों हम इतना प्यार, तो वो कह भी देती हैं आज मुझे ये सब जो करें मुझे अच्छा नहीं लगता, नजर हमारी बाएं दाहिना अंग दाहिना आंखें पर, ये उल्लू क्या कर रहे हैं, तो सबको कर आज हमारा हृदय कैसा कर, तो महाप्रभु इतनी रसिकता की बातें कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है। कृष्ण किंतु बड़े विदग्ध हैं, वही यहाँ पर है, ठग रहे हैं ना, ठगने की तो इच्छा उनके है, बहाना बनाएंगे ये जगत का कल्याण करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, यही कहेंगे और दूसरा क्या कहेंगे। तो यहां पर कह रहे हैं तुम्हारी पूर्ण कृपा किसमें होगी, राधा जी का, यदि अपने चरण कमलों को हमारे हृदय में, हमारा हृदय ही मन है और वही हमारा वृंदावन, इसलिए वृंदावन में पधारिए, प्राणा सुनो सत्य बता सुना बोल दिया
सात नौ
सुनो मोर सत्य वचन, मैं सत्य सच का क्यों कह रहे हैं, तुम्हारे जैसा मैं लबार नहीं हूँ, लबार है ना, लबार किसको करते हैं, झूठा बोलने कहेगा एक और भीतर में एक, मैं झूठ नहीं कहती, मैं अपने हृदय में जो सत्य समझती हूँ वही आपको कहती हूँ, आपके जैसा नहीं कपटता करके, जो जैसा व्यक्ति उसके मुख पर वैसा है, आपसे बढ़ करके तुमसे बढ़ करके हमारा और कोई, तुम ही हमारी प्राण दो, जिससे भी देखेंगे ना उसे वैसे ही करें, गोपिया सब समझती हैं, ब्रज अमार सब तहाँ तो मार संगम ना पाई रे ना रहे, अभी जो आपने कहा ध्यान इत्यादि से हमारे प्राण नहीं, इसलिए यदि आप अपने चरणों को वहाँ पर उदित करें तो ऐसा सुनो, पूर्वे उद्धव प्यारे परे सक्षा तमारे ज्ञान योगे कही आ उपाय, तुम विदग्ध कृपा कि तो हम जानती हैं आप विदग्ध हैं, विदग्ध मैंने एक बात को दूसरे रूप में कह करके प्रेम को बढ़ाने वाले हैं, और कैसे हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला भी इसीलिए है क्या,
रसिक शेखर कृष्ण
रसिक शेखर मैंने विदग्ध रसिक शेखर कृष्ण इसी दोनों कारणों की वजह से चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए, रसिक शेखर है इसलिए आस्वादन करने के लिए राधा भाव, और परम करुण है इसलिए अपना प्रेम देने के लिए जगत में वो अवसुनी, समस्त लीलाओं का यही दो कारण है, परम विदग्ध और करुणा में आप बड़े करुणा हम समझा विदग्ध नहीं है, जानो हो हमारे हृदय, हमारे हृदय को आप जानते हैं क्या, क्या जानते हैं, हम आपके बिना रह नहीं सकते हैं ये भी जानते हैं, मोरे जैसे कहते ना हुआ हमें ऐसा कहता हुआ, हमको इतना अध्यात्म की शिक्षा देते हुए ये अच्छी बात नहीं, कहाँ देनी चाहिए, स्थान पर ना, जहाँ जो जैसा व्यक्ति है उसके लिए ऐसा उपदेश होना चाहिए, क्लास वन में कोई पढ़ रहा है और उसको एमए की शिक्षा दो, और एमए पढ़ने वाले को क्लास वन की शिक्षा दो, तो ये तो ठीक, अर्जुन कह रहे हैं जी, जगत कहता है कि कृष्ण ने अर्जुन पर कृपा करके अपना सर्वोत्तम गुह्य ज्ञान अर्जुन को सुनाया और वो है क्या, सर्वधर्मान प्रत्यजमाम एकम शरणम। किंतु आज मैं ठगा गया, कृष्ण ने हमको एकदम ठग दिया, मैं ऐसा अधिकारी शायद नहीं था। इसलिए भक्ति राज्य में सबसे पहला सोपान है
शरणागति,
शरणागति सबसे पहले। ये शरणागति कब होती है, जब विषय में फंसा हुआ व्यक्ति कोई हो और कोई उपाय उसे निकलने का नहीं है, हृदय भी मैला है, आसक्ति परिपूर्ण है, काम क्रोध लोभ वाद मोह मांसर्प सब भरा पड़ा है, उसी समय तो भगवान के शरणागत होने की जरूरत है जिससे कि हमारी रक्षा कर दें। नहीं तो शरणागत होगा किस लिए, यदि किसी को भक्ति हो गई तो शरणागति होने की क्या जरूरत है। इसलिए शरणागत उसी समय में होने की जरूरत, जबकि संसारिक विषयों से आसक्तियों से मुझको भगवान ऐसा ही समझ रहे, मैं इसी योग्यता जो हमको शरणागति की। इधर कहते हैं सखा, सखा बड़ा है ना, किसी अर्जुन उनके सखा है, और कोई एक शरणागत होने जा रहा है, भगवान ने आशीर्वाद दिया एक राष्ट्रपति को, तुम बेटा दारोगा हो जाओ, एक बुढ़िया बड़ी दुखी थी, उसके लड़के को किसी ने अपहरण कर दिया, तो वो किसी ने कह दिया राष्ट्रपति के पास में, तो उसने उससे कहा उन्होंने पुलिस को या सबको अधिकारियों को कह करके उसके लड़के को मना दिया, बड़ी प्रसन्न हो गई, तो राष्ट्रपति को आशीर्वाद दे रही है, बेटा तुम दारोगा हो जाओ। वो जानते हैं कि दुर्गा से बढ़कर के और कुछ ही नहीं है, वही हर्ता करता और शासन करता सभी देने लेने वाला बनी, इसलिए राष्ट्रपति को कह दिया जी तुम